दिन भर तारीख 8 सितंबर दिन मंगलवार। मैं हूं रेहान फतल। भारत के उद्योगपतियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर करने के उपायों पर चर्चा।
और उन्होंने बताया जी कि हम लोग को भी एज इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोग को भी थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, हम लोग को भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
1965 के भारत पाक युद्ध की 8वीं कड़ी में जानेंगे क्यों छिपना पड़ा था एक भारतीय जनरल को गन्ने के खेतों में।
उस बेचारे का काफी बदकिस्मती से उसका एक जीपी पाकिस्तानी फौजियों ने काबू किया जिसमें उसका ब्रीफकेस था, उसमें कुछ कागज भी थे। जाहिर है उसके जान का फैसला नहीं हुआ, लेकिन जरूर थोड़ी सी शर्मिंदगी तो जरूर होगी भारत की फौज को।
चर्चा होगी मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के तबादले की भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के जाने माने लगभग 40 उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक का मकसद चीन की आर्थिक मुश्किलों से दुनिया भर के बाजारों में जारी उथल पुथल और भारत पर पड़ने वाले इसके असर का जायजा लेना था। बैठक में इस बात पर खासतौर से जोर दिया गया कि चीन और दुनिया भर के अन्य देशों में जारी आर्थिक उथल पुथल भारत के लिए एक अवसर हो सकती है। तिब्बत को चीन का स्वायत्त क्षेत्र बनाए जाने के 50 साल पूरे होने के मौके पर चीन एक शानदार कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस मौके पर आज तिब्बत की राजधानी ल्हासा में पोटाला पैलेस के सामने हजारों लोग जमा हुए, जहां एक विशाल परेड हुई। परेड के समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन उधर भारत में तिब्बत के निर्वासित संसद के अध्यक्ष पेनपा सेरिंग कहते हैं कि इस जश्न का कोई मतलब नहीं है।
While Beijing celebrates 50 years of the founding of Tibet Autonomous Region,
चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की स्थापना के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। हम समझते हैं कि ये 50 साल तिब्बत के इतिहास के सबसे अंधकार वाले 50 साल हैं। चीन के दावों के मुताबिक अगर तिब्बत को उसके शासन का फायदा हुआ है तो इसका जायजा लेने के लिए चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तिब्बत आने दे। ये थे तिब्बत की निर्वासित संसद के अध्यक्ष पेनपा सेरिंग के शब्द। जर्मनी के उप चांसलर ने कहा है कि उनका देश हर साल लगभग 5 लाख शरणार्थियों को ले सकता है और ये सिलसिला अगले कुछ सालों तक जारी रह सकता है। जिगमार गैब्रियल का ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय संघ मध्य पूर्व से आने वाले 1,20,000 शरणार्थियों को यूरोप में जगह देने के विवादित प्रस्तावों पर बैठक करने वाला है। इन शरणार्थियों में ज्यादातर गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया के लोग हैं जो यूरोपीय संघ के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। अगर यूरोपीय संघ की योजना को मंजूरी मिल गई तो शरणार्थियों को लेने से इनकार करने वाले देशों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उधर संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों का कहना है कि बहुत से सीरियाई लोग इसलिए यूरोप की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लेबनान और जॉर्डन में बनाए गए शिविरों में पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है। उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के राहत कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता की कमी के कारण 70% सीरियाई शरणार्थी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। इराकी अधिकारियों का कहना है कि सरकार के एक मंत्री का राजधानी बगदाद में अपहरण हो गया है। बताया गया है कि कार्यवाहक सहायक न्याय मंत्री अब्दुल करीम फारिस को काले कपड़े पहने कुछ अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया। और रिपोर्टें हैं कि कुर्द चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तुर्की के सैनिक सीमा पार कर उत्तरी इराक में दाखिल हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रमुख बैंकरों, उद्योगपतियों और व्यवसायियों के साथ एक बैठक में कहा है कि वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का एक अवसर है। अपने सरकारी निवास पर 2 घंटे चली इस मुलाकात के दौरान पूरी चर्चा का जोर इस बात पर था कि चीन और दूसरे देशों में आई आर्थिक कठिनाइयों का फायदा उठाने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। अधिक जानकारी जुबैर अहमद की इस रिपोर्ट में।
आज की बैठक का मकसद भारत की अर्थव्यवस्था का जायजा लेना था और दुनिया भर में आई आर्थिक कठिनाइयों से भारत किस तरह से लाभ उठा सकता है इसका पता लगाना था। 40 के करीब उद्योगपति बैठक में शामिल हुए थे जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी भी शामिल थे। उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री को कुछ सुझाव दिए और प्रधानमंत्री ने भी कुछ सुझाव उद्योगपतियों को दिए। जैसा कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष सुमित मजुमदार ने कहा।
आप लोग जो बताया आज उसके लिए धन्यवाद। हम लोग इसका जरूर विचार करेगा, हम लोग इसका विचार जरूर करेगा, फिर देखेगा क्या किया जा सकता है। और उन्होंने बताया जी ये हम लोग को भी एज इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोग को भी थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, हम लोग को भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ प्रधानमंत्री की ये पिछले कुछ हफ्ते में दूसरी बैठक थी। आज की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और RBI गवर्नर रघुराम राजन जैसे लोग शामिल थे। बैठक के खत्म होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बयान में कहा,
द प्राइम मिनिस्टर कंक्लूडेड द इंटायर डिस्कशंस बाय पॉइंटिंग आउट द वेरियस स्ट्रेंथ्स दैट इंडिया हैज।
अरुण जेटली कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने बातचीत के अंत में मानव संसाधन, ज्ञान समाज और डोमेस्टिक बाजारों के साइज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भारत मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने पर भी जोर दिया। ये थे अरुण जेटली के शब्द। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस बात से खुश हुए कि शेयर बाजारों को छोड़कर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उद्योगपतियों ने भी कुछ ठोस सुझाव दिए जिनमें दो प्रमुख थे। अरुण जेटली के अनुसार पहला सुझाव था बैंकरप्सी यानी दिवालियापन के लिए अदालत की स्थापना और दूसरी सलाह थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भ्रष्टाचार की परिभाषा को शामिल करना। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
मैंने अपने साथी नितिन श्रीवास्तव से पूछा कि पिछले एक साल में भारतीय उद्योगपतियों की क्या चिंताएं रही हैं।
देखिए रेहान साहब, ये जो मुलाकात है नरेंद्र मोदी की इन तमाम बड़े उद्योगपतियों से, अरबपतियों से, ये पिछले दो महीने में समझें दूसरी मुलाकात है। अगर मैं इसको एक दूसरे परिवेश में देखूं तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुलाकात का जो मौका था और बेहतर हो सकता था, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इस वक्त बड़े दिलचस्प लेकिन बड़े पेचीदा दौर से गुजर रही है। इस पर गौर कीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संस्था है, उसने भारत को उन मुल्कों में शुमार कर लिया है कि जहां समावेशी विकास, जिसको कहते हैं कि समाज के हर तबके के विकास पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो कम बताते हैं भारत में हो रहा है। और इसमें कोई दोराय नहीं है कि ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, इनको जब वोट मिला था तो भारत का विकास करने के वादे पर ही वोट मिला था और उसमें भारतीय उद्योग की भी पूरी मुहर थी। लेकिन जो चिंताएं हैं इन उद्योगपतियों की, इन बड़े बैंकरों की, जिसमें RBI के प्रमुख जो है शामिल हैं और तमाम बड़ी संस्थाओं के जो प्रमुख हैं, वो ये है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था डगमगाई है, उसके गिरे हुए बाजारों ने भारत को भी प्रभावित किया। ये हम सब जान रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से सेंसेक्स जिस तरह ऊपर नीचे हो रहा है, उसके ऊपर से जो भारतीय रुपए की साख है वो भी कमज़ोर हो रही है, जिससे जो निवेशी संस्थाएं हैं उनकी चिंता बढ़ रही है। आर्थिक नीतियों में सुस्ती साफ जाहिर है, संसद में राजनीतिक फैसलों के स्तर पर जो है कामकाज में रुकावट देख ही रहे हैं, हमने देखा है अभी। बाजार जो है रेहान साहब, वो भरोसे पर और समर्थन पर चलते हैं और निवेशकों समेत उद्योगपतियों को भी मोदी सरकार से यही आस है। लेकिन आप देखें, दो तीन जो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, जिसमें जमीन अधिग्रहण बिल की बात या गुड्स और सर्विसेज टैक्स यानी GST जैसे कानून पर सरकार एक साल में कुछ नहीं कर पाई है, कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है, कानून पास तक नहीं हुआ है। तो या मिसाल के तौर पर गैस की कीमतों पर देखें, उनकी उस पर जो सरकारी रुख है या सब्सिडी पर जो सरकारी रुख है, उसको लेकर राहत की कयास रही है इंडस्ट्री को भी, आम आदमी को भी और मार्केट यानी बाजार को भी। और मुझे निजी तौर पर रेहान साहब जो सबसे बड़ी बात लगती है वो ये है कि अमरीका में ब्याज दरों के बढ़ने का दौर आने वाला है, वो कगार पर कही जा सकती हैं। लेकिन अगर आप भारत में नज़र दौड़ाएं तो पिछले कुछ महीनों में सरकार और RBI यानी रिजर्व बैंक के बीच ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने को लेकर एक बार भी समान राय नहीं दिखी है। दोनों की अलग अलग सोच है ब्याज दरों को लेकर, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, RBI से बैंकों का लेने वाला ऋण हो। तो भारतीय उद्योगपतियों की चिंता जो है वो ये है कि विदेशी निवेश आए, व्यापार के नियमों में ढील बढ़े। अब आप देखिए, इसी से जुड़ा हुआ मामला रियल एस्टेट का है, तो जैसे भारतीय रियल एस्टेट में कह रहे हैं कि एक बार फिर से मंदी आ रही है और उद्योग जगत ने जो मोदी साहब को और उनकी सरकार को कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ खपत बढ़ाने की ओर भी इशारा किया है, वो भी ये दिखाता है कि जो उद्योग जगत है भारत का, वो थोड़ा सा जो है उसको मतलब उसके मन में हल्की शंकाएं आनी शुरू हो गई हैं।
ये थे नितिन श्रीवास्तव।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
शीना बोरा केस की जांच कर रहे मुंबई के पुलिस आयुक्त राकेश मारिया को अचानक पदोन्नति देकर उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अहमद जावेद को नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने मुंबई फोन कर अश्विन अघोर से संपर्क किया और इस बारे में और विवरण मांगा।
राकेश मारिया जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनका प्रमोशन तो ड्यू था ही, 30 तारीख को उनका प्रमोशन होने वाला था और प्रमोशन के बाद उनका तबादला होना तो अनअवॉइडेबल था, मतलब होने ही वाला था। लेकिन अभी 20-25 दिन उसमें बाकी है, उसके बावजूद तुरंत प्रमोट करके और उनके तबादले के आदेश निकालकर उनको रिलीव भी कर दिया गया एक ही दिन में। इससे पूरे पुलिस महकमे में थोड़ी एक सब सकते में आ गए हैं कि ये जो मामला वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे शीना बोरा मर्डर का, वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर आ गया है। उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि वो जो कंकाल मिला था पेन के पास से, वो शीना बोरा का ही है। डीएनए टेस्ट में वो कंफर्म हो गया है, मर्डर कंफर्म हो चुका है। खाली मर्डर का मोटिव एस्टेब्लिश करना बाकी था, जो कि ये सब करने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। ऐसे में उनका एक दिन में तबादला करके उनको उनकी जगह पे नए अधिकारी को नियुक्त कर देना, इससे थोड़ा मुंबई के पुलिस महकमे में थोड़ा एक आश्चर्य व्यक्त हो रहा है।
मुंबई पुलिस आयुक्त के पद को अपग्रेड कर दिया गया है, अब वो डीजी लेवल का पद हो गया है, तो ऐसी दशा में राकेश मारिया को इस पद पर रखा जा सकता था।
हाँ, पहले ये जो पद था वो एडिशनल डीजी लेवल का था, अब डीजी रैंक पर इसको अपग्रेड कर दिया गया है। और राकेश मारिया की तबादले की वजह से आश्चर्य होने का दूसरा वजह ये भी है कि उनका प्रमोशन डीजी के रैंक पर उनका प्रमोशन हुआ है, तो उनको इस पद पे कंटिन्यू भी किया जा सकता था क्योंकि ये पद ही डीजी लेवल पर अपग्रेड हुआ है। और दूसरी बात इसमें ये है कि अहमद जावेद जो नए सीपी बने हैं मुंबई के, वो 3 महीने तैयार हो जाएंगे। तो दूसरा एक सवाल ये हो रहा है कि 3 महीने में जो अधिकारी रिटायर जाएगा उनको इस पोस्ट पर लाकर सरकार ने क्या अचीव कर लिया। मतलब वो ऐसा कोई अधिकारी लाते जो कम से कम 2-3 साल उनकी इस पद पर रहने की संभावना होती, या इस तरह से अभी सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
ये बताइए, सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण, कोई टिप्पणी इस पूरे मामले पर?
एडिशनल होम सेक्रेटरी जो है केपी बख्शी, उन्होंने कहा है कि इसमें कोई गलत नहीं है, ये तो होना ही था। राकेश मारिया साहब का प्रमोशन तो ड्यू था, उनका प्रमोशन हो गया है और उनको प्रमोशन करके पोस्टिंग मिली है, तो इसमें सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये रूटीन प्रोसेस है, प्रमोशन के बाद ट्रांसफर तो होता ही है। और डीजी लेवल पे पोस्टिंग के लिए जहां वैकेंसी थी, जहां जगह खाली थी, वहां पे राकेश मारिया को पोस्ट किया गया है, तो इसमें कोई ऐसा गलत वो नहीं, इंटेंशन सरकार का नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है।
ये थे मुंबई से अश्विन अघोर। ये बीबीसी है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। यूरोप पहुंच रहे सीरियाई शरणार्थियों की समस्या पर आज यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की बैठक हो रही है। इस बैठक में जर्मनी और फ्रांस के उस विवादास्पद प्रस्ताव पर चर्चा होगी जिसमें सीरिया से आए बड़ी संख्या में शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह देने की बात कही गई है। इस बीच जर्मनी ने कहा है कि वो कई साल तक हर वर्ष कम से कम 5 लाख शरणार्थियों को संभाल सकता है और दूसरे यूरोपीय देशों को भी अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
यूरोपीय संघ की बैठक में यदि ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो प्रवासियों को अपनाने से मना करने वाले देशों पर जुर्माना भी लग सकता है। ऐसे देशों में इटली, ग्रीस और हंगरी भी शामिल हैं। जर्मनी के प्रतिनिधि और यूरोपीय संसद में इस मामले में प्रमुख वार्ताकार इसका केलर ने बीबीसी के साथ खास बातचीत में कहा,
मेरा मानना है कि ये एक अच्छा प्रस्ताव है और सही दिशा में ले जाने वाला प्रस्ताव है।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप में बड़ी संख्या में आ रहे शरणार्थी हमारी ओर सुरक्षा के लिए देख रहे हैं। उम्मीद है सदस्य देश इस पर अपनी सहमति देंगे। इसका केलर के शब्द। शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए एक ओर यूरोपीय संघ के नेता दुविधा में हैं, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में बड़ी संख्या में शरणार्थियों का पहुंचना जारी है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR का कहना है कि सोमवार को एक ही दिन में मैसिडोनिया में रिकॉर्ड 7,000 सीरियाई शरणार्थी पहुंचे, जबकि ग्रीस के द्वीपों पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या 30,000 के आसपास रही।
मध्य पूर्व से बड़ी तादाद में यूरोप पहुंच रहे शरणार्थियों के कारण यूरोपीय नेताओं में तीखे मतभेद भी सामने आ रहे हैं। सोमवार को ग्रीस के एक मंत्री ने कहा कि तुर्की के नजदीक एक ग्रीक द्वीप लेस्बोस पर स्थिति विस्फोटक हो गई है, क्योंकि वहां यूरोप में आने के लिए लगभग 20,000 लोग जमा हो गए। बड़ी संख्या में शरणार्थियों और आप्रवासियों ने एक विरोध मार्च भी निकाला, जिसमें वो मांग कर रहे थे कि ग्रीस के अधिकारी उन्हें एथेंस की ओर जाने दें और रोके नहीं। इस बीच जर्मनी के उप चांसलर जिगमार गैब्रियल ने कहा है कि जर्मनी कई साल तक हर वर्ष कम से कम 5,00,000 शरणार्थियों को संभाल सकता है।
Ich glaube, dass wir mit sozusagen einer Größenordnung von 500,000 für einige Jahre sicherlich klar kämen.
मैं समझता हूं कि हम लोग निश्चित तौर पर करीब 5,00,000 शरणार्थियों को संभाल सकते हैं। इस पर किसी तरह के संदेह की गुंजाइश नहीं है, यहां तक इससे ज्यादा को भी संभाल सकते हैं। अन्य यूरोपीय देशों को भी शरणार्थियों को लेने के मामले में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वहीं सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने चेतावनी दी है कि यदि शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने पर समय से कार्रवाई नहीं की गई तो 10,00,000 लोग और शरणार्थी बन सकते हैं। स्टीफन डी मिस्तुरा ने बीबीसी को बताया कि समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डेटन प्रक्रिया के आधार पर बातचीत शुरू करनी चाहिए, जिससे 1990 के दशक में बोस्निया युद्ध का अंत हो सका था।
It's time now for a new Dayton approach. In other words, a conference, a contact group which will address the...
समय आ गया है कि नए सिरे से डेटन प्रक्रिया को शुरू किया जाए, अन्यथा आपके सामने बड़ी संख्या में और शरणार्थी आ सकते हैं, कम से कम 10,00,000 और। दूसरे, इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता भी आ सकती है। स्टीफन डी मिस्तुरा के शब्द। यूरोप के कई देशों की सीमाओं पर फंसे सीरियाई प्रवासियों की समस्या लगातार जटिल होती जा रही है। इस साल अब तक करीब 3,40,000 प्रवासी शरण के लिए यूरोप पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रवासी जर्मनी पहुंच रहे हैं।
शरणार्थियों की समस्या पर यूरोपीय संघ की बैठक। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब भारत ने लाहौर सेक्टर में जवाबी हमला किया तो शुरू में तो उसे सफलता मिली, लेकिन उसके बाद उसे कई झटकों का सामना करना पड़ा। बात इस हद तक गई कि भारत को उस इलाके के अपने कमांडिंग ऑफिसर को बदलना पड़ा। क्या था पूरा मामला, सुनिए 1965 युद्ध की 8वीं कड़ी। लाहौर मोर्चे पर भारतीय सैनिकों को शुरुआती सफलता तो मिल गई थी, लेकिन जमीन पर हालात बहुत अच्छे नहीं थे। मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की 15 डिवीजन में जबरदस्त अव्यवस्था फैली हुई थी। पश्चिमी कमान के प्रमुख जनरल हरबख्श सिंह को जब वायरलेस पर जनरल निरंजन प्रसाद का संदेश मिला कि उनकी डिवीजन पर पाकिस्तान की 2 डिवीजनों ने हमला किया है और उनकी एक ब्रिगेड को इच्छोगिल नहर से 7 किलोमीटर पीछे गोसल गयाल तक हटना पड़ा है, तो वो भौचक के रह गए। उन्होंने जनरल निरंजन प्रसाद को संदेश भेजा,
चाहे जो हो जाए आप अपनी पोजिशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं और कोर कमांडर आपसे मिलने आपके ठिकाने पर ही आ रहे हैं।
जनरल हरबख्श सिंह ने अपनी जोंगा के ड्राइवर को जीप के पीछे बैठने के लिए कहा और खुद ड्राइव करने लगे। जब वो जीटी रोड पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। हर जगह भारतीय वाहन जल रहे थे, सड़क पर पाकिस्तानी जहाजों की बमबारी से बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और अभी भी पाकिस्तानी जहाज सड़क के ऊपर उड़ रहे थे। मैंने इस्लामाबाद फोन कर एयर कमोडोर सज्जाद हैदर से बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने जीटी रोड पर बढ़ते हुए भारतीय टैंकों पर हमला किया था।
हमारा एयर डिफेंस जो कमांडर थे उस वक्त एयर कमांडर मसूद हुसैन, तो उनकी आवाज आई, उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा मिशन जो है जैसल ब्रिज से कैंसिल हो गया है और कमांड चीफ ने ऑर्डर किया है कि आप एक गाँव अतारी की तरफ चले जाएं, जहां पर हिंदुस्तान की फौजें जो हैं वो हमारे वाघा बॉर्डर को क्रॉस करके और लाहौर के अंदर दाखिल होने वाली है। हमारी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त थी, हमें सिखाया गया था कि यू डोंट गेट नर्वस, और ये है कि वेरिएशन ऑफ टारगेट, यानी आखिरी वक्त पे अगर टारगेट को बदल दिया जाए तो उसमें भी हमें बड़ी महारत थी इन चीजों में। बहरहाल मैंने जल्दी से कैलकुलेट किया میں نے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ میں نے کبھی ولیج اتاری کا نام نہیں سنا سر, وہ کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم باٹا پور کی طرف چلے جاؤ. تو باٹا پور تو میں جانتا تھا, لاہور سے امرتسر کے روڈ پہ ہے. تو میں نے وہ کیلکولیٹ کر کے باٹا پور کی طرف ہم نکل آئے. وہاں پہ جب ہم جی ٹی روڈ پہ آئے تو وہاں دیکھا تو کوئی ہمیں ہندوستان کی کوئی فوج نظر نہیں آئی, اور میں نے دونوں طرف دیکھا, واگا کے اس طرف بھی دیکھا اس طرف دیکھا. پھر ہم نے زگ زیگ کرتے ہوئے ہم امرتسر کی طرف گئے. ہم امرتسر کے بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے کیونکہ وہاں پہ ان کی تیاشی کی چوتیں جو تھی سے آسمان بھرا ہوا تھا, وہ میں نے دیکھا. وہ بالکل ورلڈ وار ٹو مجھے یاد آ گئی. اس وقت ہم نے واپس 180 ڈگری 180 ڈگری کی ٹرن ماری اور واپس آ گئے. اس کے بعد پھر میں نے ایک زگ زیگ پیٹرن شروع کیا, 4 میل جی ٹی روڈ کے اس طرف اور 5 میل اس طرف اور 4 میل اس طرف. اینڈ دین اس وقت میں نے ٹینکس کے ٹریکس دیکھے. تو میں نے اپنی فارمیشن کو اس وقت بتایا, میں نے کہا کہ مجھے ٹینکس کے ٹریک نظر آئے ہیں, اب ان کو فالو کرتے ہیں. اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے ٹینکس دیکھے, وہ جو کہ جی ٹی روڈ کے اوپر ایک ٹینک چڑھ رہا تھا اور باقی ان کے ڈٹ گئے تھے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ٹریکڈ وہیکلس تھیں. میں نے میرا پہلا ٹرانسمیشن یہ تھا کہ شکر ہے کہ پاکستان آرمی آ چکی ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ, چل کے ان کو سلامی دیتے ہیں. تو میں وہاں ہم تقریباً 100 فٹ کی بلندی پہ فلائنگ کرتے ہیں علاقوں میں بہت جو بیٹل ایریاز ہوتے ہیں. تو میں نے وہاں جا کے اور بھی نیچے جا کے میں نے ایک ٹینک کے اوپر اپنے جہاز کو الٹا کر کے گزرا, تو اس کے اوپر میں نے سیفران راؤنڈل دیکھا. تو ایک دم سے میں نے جو ٹرانسمیشن کیا, میں نے کہا بھائی یہ تو دشمن کے ٹینک ہیں, لیٹس گیٹ دیم. اور پھر اگلے 17 منٹ جو کہ آپ نے شاید یا کسی نے ہندوستان میں بھی یا انگلینڈ میں بھی کسی نے سنا نہیں ہوگا کہ 17 منٹ ایک ٹارگیٹ کے اوپر جہاں ہم تھے, جو تھا ان کی اسمال آرم فائر جو ٹینکس ہوتے ہیں ان کے پاس 0.5 ہوتی ہے, وہ کافی افیکٹو ہوتی ہے, وہ فائرنگ ہو رہی تھی. 17 منٹ میں ہم نے وہاں پہ جو کچھ تباہی جو کی, تو وہاں پہ صرف ایک ٹینک اور ایک جو تھی وہ گن وہ بچ گئی تھی, باقی سب تباہی ہو گئی تھی اور وہ جو اٹیک تھا وہ سٹال ہو گیا.
جنرل ہربخش سنگھ اپنی آتم کتھا ان دا لائن آف ڈیوٹی میں لکھتے ہیں.
ہم دیکھ رہے تھے کہ 15 ڈویژن کی گاڑیاں سڑک پر ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں, ان کے ڈرائیور انہیں چھوڑ کر بھاگ چکے تھے. کئی گاڑیوں کے تو انجن تک بند نہیں کیے گئے تھے. سڑک کے بیچو بیچ ایک بختر بند گاڑی کھڑی ہوئی تھی, اس میں کوئی نہیں تھا لیکن چابی لگی ہوئی تھی. میں نے اسے سڑک سے ہٹوا کر کنارے لگوایا.
ہربخش سنگھ کو ڈویژنل ملٹری پولیس کا واہن گنے کے ان کھیتوں کے پاس لے گیا جہاں 15 ڈویژن کے کور کمانڈر میجر جنرل نرنجن پرساد پاکستانی بمباری سے بچنے کے لیے چھپے ہوئے تھے. ہربخش سنگھ لکھتے ہیں,
جب جنرل نرنجن پرساد مجھے ریسیو کرنے آئے تو ان کے جوتے کیچڑ سے سنے ہوئے تھے, ان کا سر ننگا تھا اور انہوں نے داڑھی بھی نہیں بنائی ہوئی تھی. ان کی وردی پر ان کا عہدہ بتانے والے سارے نشان غائب تھے. میں نے ان کو اس حال میں دیکھ کر ان سے سیدھے سوال کیا, آپ ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ہیں یا کلی؟ آپ نے داڑھی کیوں نہیں بنائی ہے اور آپ کی رینک کے بیج کہاں ہیں؟
ابھی یہ سوال جواب چل ہی رہے تھے کہ 2 پاکستانی یدھک ویمان بہت نیچی اڑان بھرتے ہوئے ان کے سر کے اوپر سے گزرے. جنرل نرنجن پرساد نے جنرل ہربخش سنگھ کو پاس کی جھاڑی میں کھینچنے کی کوشش کی. ہربخش سنگھ نرنجن پرساد پر زور سے چلائے اور بولے,
دشمن کے جہازوں کی ہم میں کوئی روچی نہیں ہے, ویسے بھی وہ ہمیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں, وہ ان واہنوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جنہیں آپ نے سڑک پر یوں ہی چھوڑ دیا ہے.
جنرل ہربخش سنگھ نے جنرل نرنجن پرساد سے کہا کہ وہ بریگیڈ کی پرگتی پر نظر رکھیں اور دوسرے دن صبح اپنے کور کمانڈر کو آپریشن کی رپورٹ دیں. 7 ستمبر کو نرنجن پرساد اپنی بریگیڈ کی استھتی جاننے کے لیے اپنے اے ڈی سی کے ساتھ ایک جونگا جیپ پر آگے بڑھے. ان کے پیچھے 2 اسکارٹ واہن چل رہے تھے. ابھی وہ کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ان پر پاکستانیوں نے میڈیم مشین گن سے فائر کیا. نرنجن پرساد اور ان کے اے ڈی سی جونگا چھوڑ کر بغل کے کھیتوں میں چھپ گئے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے پیچھے آ رہی اسکاٹ جیپوں کا استعمال کیا. ان جیپوں میں سوار سینکوں سے کہا گیا کہ وہ پیدل واپس آئیں. ان کی اپنی جونگا وہیں کھیتوں میں پڑی رہ گئی جس پر ان کا بریف کیس رکھا ہوا تھا. اس میں کئی مہتوپورن کاغذات بھی تھے. جیپ پر فارمیشن کا جھنڈا اور اسٹار پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی. بعد میں یہ جونگا پاکستانی سینکوں کے ہاتھ لگ گئی اور ریڈیو پاکستان نے بریف کیس میں رکھے کاغذات کا پرسارن شروع کر دیا. ان کاغذوں میں جنرل ہربخش سنگھ کے خلاف سینا ادھیکش سے کی گئی شکایت کی ایک پرتی بھی تھی. तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंत राव चव्हाण ने इस घटना का जिक्र अपनी डायरी में किया है। उनके सचिव रहे राम प्रधान ने बीबीसी को बताया,
इनको जवाबदारी दी थी सब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आप लाहौर सेक्टर की तरफ जाइए, तो उस वक्त जाते वक्त एक रात को ये जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके गए तो उन्होंने आर्मी पुश करने के बजाय आगे जाने के बजाय उन्होंने कहीं एक खेत में ऐसा किया कि हम रात को यहाँ निकालेंगे और कल सुबह जाएंगे, और उसी रात को पाकिस्तानी फोर्सेस ने इनको अटैक किया और इनके फोर्सेस जो है काफ़ी ख़त्म किए, और ये जो है निरंजन प्रसाद उनको भी वो शुगर केन फील्ड्स में छुपना पड़ा रात को। ये जब दूसरे दिन इंफॉर्मेशन मिली तो ये कैसे हुआ, एक तो इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं किया, दूसरा ये आराम से जैसे जो पिकनिक को जाते हैं इस तरह से गए थे, इन्होंने आर्मी फॉर्मेशंस नहीं की थी मार्चिंग में कि प्रोटेक्शन कोई जाके इंटेलिजेंस पहले निकालो और फिर करो, तो इस वजह से ये इंसिडेंट हुआ था। और ये इंसिडेंट में काफ़ी मेरे ख्याल में निरंजन प्रसाद की का फॉल्ट था, वो ये इतला हमें भी मिली पर हमें बाद में मिली, पहले नहीं मिली।
हरभक्त सिंह इस चूक के लिए मेजर जनरल निरंजन प्रसाद को कोर्ट मार्शल करना चाहते थे, लेकिन जनरल चौधरी ने निरंजन प्रसाद से इस्तीफा देने के लिए कहा और उनके स्थान पर मेजर जनरल मोहिंदर सिंह को 15 डिवीजन का नया कमांडर बनाया गया। बाद में जनरल निरंजन प्रसाद ने जनरल जोगिंदर सिंह को उनकी पुस्तक बिहाइंड द सीन के लिए दिए गए इंटरव्यू में इस बात का खंडन किया कि उन्होंने जीप में कोई महत्वपूर्ण कागज छोड़े थे।
मैं जोंगा में सिर्फ एक पैड छोड़कर आया था, बाद में मेरे अफसरों ने मुझे इस मुद्दे पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मेरे खिलाफ जांच उस शख्स को सौंपी गई जिसकी गोपनीय रिपोर्ट में मैंने प्रतिकूल प्रविष्टि की थी।
जोगिंदर सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि जनरल निरंजन प्रसाद को इसलिए नहीं हटाया गया कि वो एक ढुलमुल शख्स थे, बल्कि इसलिए कि वो एक डिफिकल्ट सबऑर्डिनेट थे। फारूक बाजवा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा,
समझ नहीं आया जनरल साहब को कि वो हो क्या रहे, कि वो अभी कामयाब क्यों नहीं हो रहे। तो वो गया उनको मिलने को, तो वो कह रहा था कि एक्चुअली ये बहुत मुश्किल है, वो खुद बड़ा परेशान लग रहा था, कह रहा था कि हम मुझे इजाजत दें कि मैं थोड़ा सा वापस जाऊं, हम थोड़े से रीइंफोर्समेंट लें, हम थोड़ा सा अपना असला और जो सप्लाईज होते हैं उनको भी प्लानिश करें। हरभजन सिंह समझ लो था, उसने उसको निकाल दिया कमान से, उसने कहा कि आप बिल्कुल जैसे हमें लड़ना चाहिए कि इंडियन फौजी को आप ऐसे नहीं ला रहे, तो अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो मैं किसी और को रखता हूँ आपके जगह पे। तो बिल्कुल वही बात निकली। तो फिर उस बेचारे का काफ़ी बदकिस्मती से उसका एक जीप भी पाकिस्तानी फौजियों ने काबू किया जिसमें उसका ब्रीफ केस था, उसमें कुछ कागज भी थे। जाहिर है उससे जान का फैसला नहीं हुआ, लेकिन जरूर थोड़ी सी शर्मिंदगी तो जरूर होगी भारत की फौज को, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था।
इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं कल विश्व भारती कार्यक्रम में। आज बंगलोर में विश्व कप फुटबॉल में क्वालिफाई करने के लिए भारत और ईरान के बीच मैच खेला जा रहा है। हमारे साथी आदेश कुमार गुप्त इस मैच पर नजर बनाए हुए हैं, क्या समाचार है बेंगलोर से?
रेहान, दरअसल समाचार कोई बहुत अच्छा नहीं है, सिर्फ इतना अच्छा है कि भारतीय टीम मध्यांतर तक 1-0 से पिछड़ रही है, यानी ईरान जैसी टीम को उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा गोल ना कर सके। दरअसल भारत के सभी खिलाड़ी अपने ही हाफ में खेल रहे थे और मैच का जो एकमात्र गोल हुआ वो 28वें मिनट में हुआ, जब ईरान के हाजी साफी एक मूव बनाने निकले और जैसे वे भारतीय टीम के गोल बॉक्स के पास पहुंचे तभी लिंगदो ने उन्हें रोकने की कोशिश की, फाउल हुआ और उसके बाद जो फ्री किक मिली उसे लिया तैमूरियन ने, और जैसे ही वो फ्री किक गोल की बॉक्स की तरफ बढ़ रही थी गुरप्रीत का हेडर लगा और उस लौटते हुए हेडर पर सरदार अजमाउन ने बेहतरीन गोल कर ईरान को 1-0 के बढ़त दिलाई। उसके बाद भारतीय टीम जैसे नींद से जागी, सुनील छेत्री और रोबिन सिंह ने कुछ तालमेल करके गोल करने की कोशिश की, बल्कि ये कही कि मुंह बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। देखते हैं अभी बाकी के मैच में क्या होता है।
1-0 की बढ़त ईरान को। और अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल और भारत पर पड़ने वाले इसके असर का जायजा लेने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने लगभग 40 उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। जर्मनी के उप चांसलर ने कहा है कि उनका देश हर साल लगभग 5 लाख शरणार्थियों को ले सकता है और यह सिलसिला अगले कुछ सालों तक जारी रह सकता है। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी का कहना है कि बहुत से सीरियाई इसलिए यूरोप की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लेबनान और जॉर्डन में बनाए गए शिविरों में पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है। और महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद भी राकेश मारिया चर्चित शीना बोरा हत्याकांड की जाँच की देखरेख करते रहेंगे। बीबीसी समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था राजेश चौहान ने। रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।